اب اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ذکر انبیاء کرام کا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا، جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو چھٹلا دیا، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی. کون سی بستی؟ قوم لوط. افلم یکونو یرونہا، کیا انہوں نے ان کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. ہائی لائٹ کریں، آپ اپنے اوپر لے لیں. اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ لوگ آپ کے پردے اور حجاب اور نقاب اور داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں تو نبی کا بھی اڑاتے تھے، ہنستے تھے، جوک کرتے تھے، وہ دیکھو جا رہے ہیں، وہ دیکھو. کہا اچھا، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے بدگمانی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. نوٹ کریں، خوش ہو رہے ہیں اپنی بے دینی پہ، کہتے ہیں شکر ہے ہم اتنے سٹبن تھے نا، ہم اس کی باتوں میں نہیں ہے. تم آ جاتی ہو باتوں میں جذباتی، شکر ہے ہم نے دیکھو کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا رمضان گزار لیا، گھر بیٹھ کے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اپنی مرضی سے کام کرتے رہے. خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نہیں بچے، ہم اس کی باتوں میں نہ آئے. اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہوگا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا. کون گمراہ ہوتا ہے؟ اب آیت کو ہائی لائٹ کیجیے، آیت 43 ہے. یہ بھی آیت تدبر ہے، لیکن ایک اور آیت ہم انشاءاللہ آگے آئے گی تو آپ کو کوشش کریں گے دونوں کی بھیج سکے، نہیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. آرائی تمن اتخذ الہہ ہواہ، کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ ہے وہ آیت کہ جس کو آج امت مسلمہ کو خود سمجھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا ہے. قرآن سے دوری نفس پرستی کو جنم دیتی ہے. جب ہم نے سنت سے کاٹا قرآن کو تو خواہشوں سے جوڑ لیا، اپنی مرضی کی تفسیریں کی، اور جب خواہش کی پیروی کی تو نہ قرآن دکھا نہ سنت دکھی. شیطان ابلیس کیوں ابلیس بنا آپ کو پتا؟ خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا تھا، عقل استعمال کرنے لگ گیا. آج آپ دیکھیے کہ خواہش پرستی سب سے بڑی وبا ہے. آج ہماری خواہشیں ہی ہمیں جینے نہیں دیتی، اسی لیے ہم اللہ کو بھولے ہوتے ہیں. تو نفس کو پوچھنا بدترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اس زمین پر، یعنی آسمان کے نیچے زمین پر، جس معبود کو سب سے زیادہ پوجا جاتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس. انا، آئی، ایم، مائی، مائن، اپنی ہی ذات میں کھوئے ہوئے ہیں. یہ سب میری ایگو، مجھے پوجو، میں کیسی لگتی، میرا کیا، میرا گھر، میں اور اپنی خواہشوں کو پوچھنے والا اللہ کو پھر نہیں پوچھے گا. دیکھیے گھر میں دو بت تو نہیں رہ سکتے، ایک آپ کا ہے تو ایک رب کا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بٹ آئی ایم اکبر ٹو. اللہ اکبر ہے تو کہیے انی اصغر. اپنی انا کو توڑ کے قرآن پہ عمل ہوتا ہے، اپنے سٹیٹس کو، اپنے اس بت کو چھوڑ کر پھر اسلام سمجھ آتا ہے. جو لوگ اپنی انا میں رہتے اور بہت خود کو بڑے سمجھتے ہیں ان کو پھر کتاب اچھی نہیں لگتی، کیونکہ قرآن تو کچلتا ہے ان کی خواہشات کو. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشوں پہ چلنے سے زیادہ اپنی خواہشوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دے. فرق چھوٹا سا ہے، آپ خوب اپنی خواہشات مانیں، الحمدللہ دل کی مانیں، سب مانیں، شرط ایک ہے، اس سے پہلے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع کر لیں. دیکھیے ہماری چوائس زندگی میں کئی دفعہ بدلتی ہے نا، عمر کے ساتھ بدلتی ہے، ماحول کے ساتھ بدلتی ہے، مال کی کمی زیادتی ہونے سے بدل جاتی ہے نا. تو اتنی جو چوائسیز بدلی تو ایک چوائس اور بدل لیتے ہیں. اے اللہ جو تجھے پسند وہ مجھے پسند، پھر خوب خواہش پوری کیجیے. اے اللہ جو تجھے نہیں اچھا لگتا آج سے مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، چھوڑ دیا میں نے اس کو، अब आप खूब ख्वाहिश परस्त हो जी, नो प्रॉब्लम। यानी आप लिख के देख लीजिए, मैं अक्सर तकाबुल कराती हूँ तो एक लफ्ज लिखिए हवा। अरबी जुबान में ख्वाहिश को हवा कहते हैं ना, क्योंकि यहां भी वही लफ्ज है ना, हवा हो। हवा बा मुकाबला हुदन। हुदन क्या है जो अल्लाह ने भेजी? हुदन लिल मुत्तकीन। जब हुदन की जगह हवा आ जाती है ना, तो इंसान भटक जाता है। और ये हवा जो चलती है ना बाहर, वो भी यही है, हवा उड़ाती फिरती है इंसान को, इस तरह ख्वाहिशें भी उड़ाती फिरती हैं। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। एक ख्वाहिश पूरी करें तो उसके पीछे से एक और ख्वाहिश सर उठा के देखती है, उसको पूरा करके देखें तो तीसरी ख्वाहिश हमारी सामने खड़ी होगी। तो इन सारी ख्वाहिशों को टेम कर ले, दैट्स इट। और साहबा ने ऐसे ही किया, फिर उनको इसमें भी मजा आने लग गया। फरमाया, क्या तुम ऐसे लोगों के साथ कर सकते हो? अब खुद सोच लो, क्या तुम समझते हो कि अक्सर सुनते हैं? नहीं, ये तो जानवर जैसे हैं। कैसे? बल्कि उनसे भी गए गुजरे। आप देखिए कि जानवर शिर्क नहीं करते, इंसान शिर्क करता है। इंसान जब जानवर बनता है ना, तो वो जानवर भी नहीं रहता। मसलन कुत्ता वफादार है, इंसान वफादार नहीं रहता अपने मालिक का। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को देखो किस तरह से वो बात करते हैं। फिर इसके बाद अगली आयत देखिएगा, तुमने देखा नहीं तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो इसको दाइमी साया बना देता। हमने सूरज को इस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है, हम इस साये को रफ्तार रफ्तार अपनी तरफ समेटे जाते हैं। कितनी आसान आयत है, सिंपल सी बात है। दिन में जो सूरज के मुख्तलिफ एंगल है उसको कहा गया, और किसी ने कहा कि मुझे किसी ने कायद दी है पढ़ने को, कि किसी लड़के का तसव्वुर करके कि उसका पढ़ो तो देखना वो कैसे तुम्हारे कदमों में आएगा। शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, उस लड़के का खुद ही दिल चाहेगा तो आप जरा चेक कर लें वो वजीफा ठीक है। तो मैंने जब वो पर्ची उनके हाथ की खोली तो यह आयत लिखी थी, सुम कबद ना हो लही ना कब दही यसीरा, कब्जा कर लो इस लड़के पे। अल्लाह, यही रह जाता है कुरान, वल्ला ही कुरान ऐसे ही रह जाता है। और हालांकि कब्जा इसको कहते हैं, ये जो पाम होती है ना मुट्ठी, ये कब्जा। तो सिर्फ लफ्जों के साथ जोड़ा, फिर उसको पकड़ के अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर आप भी मैं भी फिर छोड़िए बाकी चीजों को, या इतने पढ़ते जाते हैं और सारे नॉन मुस्लिम्स को अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर क्या जरूरत है दावत और जिहाद की। ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्ला, यकीन करें रोने का मुकाम है, दिल से हूक उठती है कि इतनी चुनी हुई उम्मत इतनी नासमझी के काम करने लग गई, उसकी वजह कौन है? हम इसकी वजह, हमने इस किताब को हम नहीं किया। अल्लाह हमें इस पे माफ कर दे। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकूने मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया, और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बिशारत बनाकर भेजता है, फिर आसमान से पाक पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को इसके जरिए से सैराब करे, एक मुर्दा इलाके को इसके जरिए से जिंदगी बख्शे, और अपनी मखलूक में बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार इनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक हासिल करें। क्या हम बारिश को देखकर सबक हासिल करते हैं? कि जिस तरह बारिश आसमान से बरसी तो मट्टी नरम हुई, इसी तरह ये कुरान की बारिश दिलों पे पड़ती है तो दिल की मट्टी नरम होती है। मगर अक्सर लोग कुफर और नाशुक्री के सिवा कोई दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक खबरदार करने वाला उठा खड़ा करते। पस नबी काफिरों की बात न मानो, बल्कि वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, इस कुरान को लेकर इनके साथ जबरदस्त जिहाद करो। ये है आयत तदब्बुर। इस पे एक तो दर्स भी है, पूरा डिटेल दर्स है, जिहाद बिल कुरान या कुरान को आम कर दो। लेकिन हकीकत में ये इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का बेहतरीन मामला है, इसी को आप जिहाद बिल कलम भी कहते हैं। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया को कुरान देना ये उम्मत मुस्लिमा की जॉब थी, सिंपल सी बात है। जहां तक पहुंच सकते हो, जहां तक पहुंच सकते हो, कुल्लुकुम राइयुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से हर एक इस चीज पे असाइन किया गया कि जहां तक तुम्हारा दायरा कार है, जहां तक तुम्हारी अप्रोच है, तुमने वहां लोगों को दीन देना। यानी आप कह लीजिए कि इस दीन को प्रोफेशनली इस तरह लोगों तक फैलाना था कि लोग इसको पाले। अब हमने क्या किया? वक्त तो हमारे पास उतना ही था जितना सबके पास होता है। जो वक्त कुरान को और दीन को देना था वो हमने लोगों को दे दिया, जो हक कुरान और दीन का था वो लोगों को दिया। जब लोगों को हक से ज्यादा दिया, किताब को उसका हक भी नहीं दे सके। नतीजा क्या निकला? कि आज ये किताब आम ना हो सकी। कार्टून देखेंगे समझ के देखेंगे, नावल देख पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे अकल से पढ़ेंगे, कुरान कैसे पढ़ते हैं? और आज उम्मत मुस्लिमा का अपना ताल्लुक इस किताब से क्या कहते हैं, बताना खत्म कब होगा? अम्मा यतसाल उनमें जाएंगे ताकि जल्दी से पढ़े और खत्म हो जाए। कुरान पढ़े, कोई सामने नजर आता है कुरान को छोड़ देते हैं, पढ़ते हुए सात बातें करते हैं। तो आज इस किताब के जरिए हमने इस दुनिया को किस तरह मुसखर करना है कि सोसाइटी की ग्रॉस रूट से लेकर इन लीड्स तक कुरान के पानी को पहुंचाना है। अब देखिए, एक दरख्त को इमेजिनेशन में लाइए, या एक बाग है, वहां घास भी और दरख्त भी हैं। पत्तों पे पानी डालेंगे ना तो दरख्त कभी भी फले फूलेगा नहीं, मट्टी थड़ जाएगी जो पत्तों पे लगी हुई है। क्या करेंगे, जड़ों में पानी डालेंगे, जड़ पे डाल देंगे ना खुद ब खुद पूरे दरख्त में चला जाएगा। जड़ें क्या होती, किसी भी सोसाइटी की ग्रॉस रूट, आम से आम दर्जे के लोग, पब्लिक, जिसमें आप गुनाहों में डूबे हुए वो लोग जिनकी जिंदगी में कभी कुरान नहीं खुला उनको भी ले आते हैं, और इसी तरह दूसरे भी हैं। अब जब ये काम आप करना चाहते हैं तो उसका तरीका कार क्या? सबसे पहले नंबर एक, आपको अपने अंदर खुद जिहाद करना पड़ेगा इस कुरान के जरिए। कुरान की तालीम के साथ ही जिहाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको अपनी नींद से जिहाद करना पड़ेगा, आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने बच्चों को कुछ अरसे के लिए मैनेज करना पड़ेगा, आपको एक माल लगाना पड़ेगा, आपको कुछ किताबें लेनी पड़ेंगी। आपका अपने साथ जिहाद सबसे पहले शुरू होता है। जब आप ये करते हैं फिर इसमें ख्वाहिशों से जिहाद होगा, फिर शैतान से जिहाद होगा, आपको कई मौके पे मसला आएगा, आपको बिगड़े हुए मुआशरे से जिहाद करना पड़ेगा, चारों तरफ लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। कैसे हो सकता है कि वो कुरान जो 23 साल में नाजिल हुआ आज हम उसको 23 महीने भी ना दे सके? हाउ इज इट पॉसिबल? यानी मैं सोचती हूँ कि कैसे एक इंसान ये सारी चीजें सोच सकता है कि हम इस किताब को आम किए बगैर दुनिया में खैर ले। लोगों को फेमिलियर करना है इस किताब के साथ, लोग इससे थ्रेट फील करते हैं। आप देखिए, जिस चीज पर हाथ चलता है ना उसको चलाना आसान होता है। अपने घर में खाना आसानी से बनता है, अपनी गाड़ी ठीक चलती है, अपना कंप्यूटर आपसे ठीक चलता है। इस कुरान से फेमिलियर करना है खुद को भी दूसरों को भी। जब लोग कहते हैं ना फुलां सूरत किधर है फुलां कहाँ है, तो मुझे एकदम झटका लगता है। फिर मैं कहती हूँ नहीं पता होगा बेचारों को, मैं प्यार से बता भी देती हूँ जो भी कोई होते हैं, लेकिन मुझे झटका बहुत लगता है। हाउ इज इट पॉसिबल किसी को अपने बच्चों के नाम ना आते हो? हाउ इज इट पॉसिबल ये ना बताओ कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, पहले दुनिया में कौन सा आया छोटा कौन सा? हमें तो अपने घर की एक एक चीज चम्मच का पता कि ये नई है ये पुरानी है, ये कब आई ये कब नहीं आई, पता कि नहीं पता? ये महंगी है ये सस्ती है पता है कि नहीं पता? पूरे घर को एक नजर से सोचे तो ये कैसे हो सकता है हमें कुरान की सूरतों का नहीं पता, आयतों का नहीं पता, किसका क्या मिजाज है, कौन सी गर्मी कौन सा, ये कैसे हो सकता है नहीं पता? नहीं पता तो मान लीजिए इस कुरान पे हाथ नहीं खुलावा। लोग इस पे हैरान होते हैं आपको याद कैसे रहता है, मैं इस पे हैरान होती हूँ आपको याद क्यों नहीं रहता। जब ये किताब आपको अपनी किताब लगेगी फिर ऐसे होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। जब आप खुद से ये काम करेंगे ना तो इसके लिए आपको कुछ वक्त तो देना पड़ेगा। आज हम मुसलमान दूसरों को क्यों नहीं ये बताते, क्योंकि हमें खुद नहीं आता और मसला बड़ा है। फिर आप देखिए कि जब हाथ में कलम आता है ना तो उस कलम के जरिए मुआशरे के अंधेरे दूर होते हैं। जब अंधेरे दूर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह किताल की नौबत ही नहीं आती, किताल तो बहुत दूर की बात है। हक और बातिल की कशमकश ये फुरकान तो कुरान से शुरू हुआ, फिर आप दीन पे चलना शुरू करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा तो लोग आपकी मुखालफत करेंगे। आज आप घर में आराम से बैठिए, कोई मुखालफत नहीं है। आप कुरान की तालीम को आम करें, इसको अल्लाह अपने कुरान में जिहाद कबीर कह रहा है। सबसे बड़ा जिहाद यह है कि मुआशरे के अंधेरों में कुरान के चिराग जला दें। इसके लिए अगर अल्लाह आपको मुझे कबूल कर ले, यकीन कीजिए कि हम अपने नसीब पे फख्र करें। जब ये चिराग आप जलाने निकलेंगे मुखालफतें होंगी, क्यों? लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बाज़ का तो उनकी जात के खिलाफ कोई बात आ जाएगी, बाज़ दफा उनके आराम के खिलाफ होगी, बाज़ दफा कुर्बानियां होंगी, बाज़ दफा कुछ होगा। कोई एक सिस्टर थी वो कहने लगी एक इमाम साहब है वो बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं और सच बताते हैं, नतीजा क्या निकलता है कि जो इधर उधर के काम करने वाले जिनके बिजनेस अच्छे नहीं थे उन्होंने मस्जिद में आना छोड़ा, दूसरी मस्जिद में चले गए, क्योंकि इमाम साहब कहते थे मैं पेड़ नहीं हूं कि मैं आपकी मर्जी के मसले बताऊं, हक यह है कि ऐसी कमाई कबूल नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, कमाई नहीं छोड़ी वो मस्जिद छोड़ दी, तो छोड़ दी तो छोड़ दी। इमाम साहब का क्या गया मुझे नहीं पता उनके क्या तरीकेकार थे, लेकिन ये सच है कि जब ये कुरान दुनिया में आम होगा तो कुछ लोग तो मिसफिट होते हैं। बस आपने इस वक्त अपने आप को जमाते रहना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। फिर आप देखिए जब आप खुद अमल करके आप कहते हैं चलिए माशाल्लाह आई एम रेडी टू सर्व द ह्यूमैनिटी माशाल्लाह, अब आप जब सोसाइटी में आएंगे ना तो सबसे पहला आपका महाज है। ये टॉपिक मैंने दो से ज्यादा दो पांच महाज हैं कुरान के, कि जब आप कुरान से लैस माशाल्लाह आप कुछ वक्त लगा के कुरान की तालीम लेते हैं, आप कुछ अपने अंदर दर्द पैदा करते हैं, आप जब बाहर निकलेंगे ना सबसे पहला आपका महाज जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमों को जिस पे जाके लड़ना है वो शिर्क का महाज है। वो कब्रें, वो दरगाहें, वो सारे पीर बाबे जहां लोग कुरान से दूर होने की वजह से जाके सर टिका रहे हैं, माथे टिका रहे हैं, अब जब उनसे जाके बात तो करें, वो तो कहेंगे आप तो पता नहीं मुशरकी हो गए, पता नहीं आपको वहाबी कह देंगे, आपको साबी कह देंगे, आपको कुछ भी कह देंगे। और शिर्क अनपढ़ लोगों में होता है, ये पहला महाज होगा। जब शिर्क के साथ बात होगी ना तो आप देखिए ये इट्स नॉट बिग डील, सिर्फ ऐसे लोगों को कुरान का तर्जमा सिखा दें, तर्जमा सुना दें, सूरत अल अनाम सुना दें जाके, और इसी तरह सूरत अल नहल और इस तरह की, तो समझ जाएंगे वाकई। हाँ ऐसे लोगों पर टाइम बहुत लगाना पड़ता है, ये मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, वो देर से बात समझते हैं, होते बहुत प्योर है, बहुत सिंसियर मुखलिस, लेकिन बात नहीं जल्दी उनके पल्ले पड़ती। और जो पढ़े लिखे जरा दुनियावी तौर से भी और दूसरे थोड़ा सा हिंट देते हैं, वो कहते हैं बस बस इट्स फाइन आई अंडरस्टैंड गो हेड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और वो थोड़ी देर में आपसे बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, तो ये फितरी बात है। लेकिन बहरहाल शिर्क मिटाना इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ हम और आप अगर इस कुरान के हथियार को ले निकले। दूसरा महाज जो आएगा ना जो उससे बड़ा, वो क्या है, पढ़े लिखे लोगों तक कुरान पहुंचाना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए जिनके जहनों में शकूक है शुभात है, जिनको कुरान अब अजीब लगता है, ये होते हैं क्रीम ऑफ दी सोसाइटी, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं छोड़ते, क्योंकि ये आपके साथ 10 बातें करेंगे, जो सीधे लोग होते हैं वो कहते हैं इट्स ओके जी कह दिया आगे चले जी बात समझ आ गई आगे चले, लेकिन ये आपसे 70 बातें करेंगे, क्योंकि ये आपके साथ औरों को भी बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सारों से देखते हैं, वो किसी और के इज्म से भी इंप्रेस है, उनको कई चीजें। अब ऐसे लोगों के साथ आप प्यार से मोहब्बत से नरम हाथों से इस किताब की बात करते जाएं करते जाएं, तस्किया करें तरबिया करें, एक वक्त आएगा और आप इनको अल्टरनेट दिखा, इनको दिखाएं कि इस मिसाल एक इस्लाम का सोशल सेटअप दिखा दें कितने उसके फवायद हैं। और ऐसे लोगों में अमूमन इकोनॉमिकल इश्यूज बड़े उठते हैं, तो आप उनको इस्लामिक का फिर इकोनॉमिकलिज्म दिखाएं, फिर आप उनको सुनाएं कि ये नोट कैसे बने गोल्ड कॉइन से निकले, फिर वो मुतासर होंगे अच्छा ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, हमें तो ये पता ही नहीं है कि, यानी इनको उनके लेवल से बढ़ के आप बड़ी बात करें और इनको अल्टरनेट दें। जैसे अपने बच्चे के ऐसे छुरी छुड़ानी होती है ना तो आप उसको क्या देते हैं, आप उसको कोई रैपर ही पकड़ा दें टॉफी का, कुछ ना कुछ देंगे फिर होगा, और अगर आप छुरी बच्चे से छीने और खींचेंगे तो क्या होगा, आप देख लीजिए कि वो उसका भी हाथ जख्मी करा देगी, वो आपको भी, वो खेलने के जोश में है लेकिन आपको वो खतरा नजर आ रहा है, आपको छुरी दिखती है, बच्चे को वो खिलौना दिखता है। इसी तरह मुआशरे में लोग हराम हलाल का फर्क किए बगैर खेल रहे होते हैं इंजॉय कर रहे हैं, तो कहा जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, इस किताब के जरिए उनको बताओ ये गलत चीजें हैं, ये सांप और बिच्छू हैं जो पाले में हैं, इसका कल हिसाब देना पड़ेगा, बस इस वक्त भी मसला होगा। और लोगों से गुनाहों की छुड़ियां छुड़ाना ये आसान काम नहीं, यही है कश्मकश जिसको कहा जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह हैं, 40 साल आपकी जिंदगी के इब्तदाई दौर, कोई आपका दुश्मन नहीं था, आप लोगों की आंखों का तारा थे, खल्फुल फजूल को देख लीजिए, हजर अस्वद का किस्सा देख लीजिए, हर जगह आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। जो ही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक की आयतें उतरी और कुम फान जिर का हुक्म हुआ, सब दुश्मन हो गए। आज भी जो शख्स इस किताब को लेकर मुआशरे में आएगा वहां इख्तलाफ होगा, तो वहां जिहाद कबीर करना पड़ेगा, ये होगा रेजिस्टेंस नहीं, जिस तालीम के साथ उठती समझिए वो गड़बड़ है, और जिसको सारे ठीक कह दें जिसको सारे एक्सेप्ट कर ले वो कभी ठीक नहीं होता। आज अगर मैं और आप इस दौर में 2015 का दौर लिख लीजिए, अगर वाकई को नेकी का काम करना चाहते हैं, आप कहते अच्छे क्या करें, कि गिरफ्तारी करानी है तो हमें बताइएगा, किसी को उम्रे पे भेजना है तो बताइएगा, ठीक है ये नेकी है। कल का दर्स बड़ा बिटर हो गया था, यानी बिटर इसलिए कि मैंने जन्नत के मौजू से शुरू किया, लेकिन मुझे एकदम बस यही लगा कि क्या वाकई वही जन्नत है जो हम चाहते हैं और वही सहाबा मांगते हैं। तो अगर आपको मुमकिन हुआ कभी तो सुनिएगा, जन्नत की तलब उसका नाम था, कि क्या जाली जन्नत तो नहीं है, कल जाके पता चला ओहो सॉरी हम तो किसी और ही जन्नत में आ गए, हमने तो सोचा था ये होगी, असली नहीं मिली है तो नकली है, नकालों से होशियार रही है। आज जाली नुस्खे हैं जन्नत को पाने के, और इसकी सजा आज दुनिया में क्या मिलती है कि अल्लाह मुखलिसीन को फिर दुनिया में बीमारियों और तकलीफों और टेंशनों में डाल रहा है कि नहीं फरिश्तों में नहीं इनको जन्नत जरूर देनी है जो भी है, फिर अल्लाह दुनिया में पाक करता है। तो लिहाजा आज आंखें खोल लेंगे तो फायदा है, नक्कालों से पाक, होशियार पाक, प्योर क्लीन क्लियर क्रिस्टल क्लियर दीन कैसे आएगा जाहे तुम भी ही जिहादन कबीरा। मेरी बात आप क्यों सुने बताइए, मेरा आपको क्या मीठा है, मैं आपकी क्यों सुनूं, मैं सिर्फ अपने रब की सुनूंगी और मैं अपने नबी की सुनूंगी। आज जरूरत है शख्सियात से ऊपर उठकर, इदारों से ऊपर उठकर, नामों से ऊपर उठकर उम्मत मुस्लिमा सिर्फ एक कॉज पे जमा हो जाए, सारे दीनी इदारे सारी जमातें सारे गिरोह इस बात पे मुत्तफिक हो जाए। खामोश, मेरे उस्ताद कौन है, चुप, डोंट आस्क अबाउट दैट, बस उनके लिए दुआ करो। तुम्हारे कौन है, तुम किस सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, तुम किस स्कूल से पढ़े हो, किस स्कूल हो, सब खामोश, सबको पीछे कर दे, सिर्फ 2 साल दे दे उम्मत को, डोंट टॉक अबाउट एनी पर्सनैलिटी। चलो इस कुरान को पकड़ते हैं और इसके साथ हदीस को लेते हैं, मसलकों से पाक और जमातों से पाक और गिरोही तासुब से पाक, इस किताब के सिर्फ तर्जमे तफसीर को आम कर दें, उम्मत खुद जान जाएगी कि कुरान का मिजाज के। आज हम दीनदारों ने लोगों को आपको बताया इस कुरान के पढ़ने से रोका हुआ, जिन्होंने किताब को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया वो कहते हैं ये आम लोगों के पढ़ने की चीज ही नहीं है। औरतें तौबा तौबा, ये तो और ही गुमराही, अब औरतें पढ़ने लगे और अब तो पढ़ाने भी लगी, वो फतवे दे देंगे आपके खिलाफ, इन्होंने उम्मत को खराब कर दिया, इन्होंने धोखा दिया, क्यों, क्योंकि हमारी मोनोपोली रहे, वी आर हैवी हैव द अथॉरिटी, हमसे पूछ के मसले करो, जब कोई मरे हमें बुलाने और जब कोई निकाह कराने हमसे, और तुम कहां जरूरत रखते हो। देखिए ये बात तलख हो रही है लेकिन लंबी भी हो रही है, आपको कहते हैं कि यहूद का डिक्लाइन कब आया, जब तौरात की तालीमात को उन्होंने बंद कर दिया, तौरात आम यहूदी के घर में निकल आए ये जुर्म था, तौरात के नुस्खे छापना उसको आम पब्लिसाइज करना उनके नजदीक में जुर्मे कबीर था। सिर्फ एक दो नुस्खा होता था जो उस वक्त के बादशाह के पास होता और वो भी उसके तख्त के पीछे कहीं किसी छोटे से चैपल में होता, और एक अपनी मर्जी का जो प्रीस्ट उनका वहां रखा जाता दरबार में उसको इजाजत थी वहां जाके मसला देख के पढ़ के आने की, कोई मसला आता बादशाह उसको कहता जाइए देखिए, इसलिए तो फिर उस एक प्रीस्ट के हाथ गर्म करके लोग मसला बदलवा लेते थे। कुरान जितने आज छपते हैं अगर इस तरह तो रात छपती तो क्या वो उलमा उनके किताब को तब्दील करते। तो जब किताब पर चंद लोगों की मोनोपोली हो जाए ना, फलां आली हजरत और आलिम और फाजिल और हाफिज और फला, तो याद रखिए समथिंग इज रॉन्ग। ये कुरान सिर्फ मेरी किताब नहीं है, इस शहर में 10-15 और लोग भी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको सिर्फ ये किताब उनकी और मेरी मलकियत नहीं है, ये आपकी मलकियत है। और इस किताब को जब तक आपने खुद नहीं पकड़ा अपने लेवल पे, आपको आपका हक नहीं मिला। ये है जिहाद कबीर और ये उम्मत मुस्लिमा का आज 100 मसलों में से एक हल है। एक चीज आम कर ले इस रमजान से, ये दर्द लेकर उठे कि मैंने नहीं और जीना जब तक ये किताब मुझे समझ ना आ जाए, मैंने कुछ और नहीं पढ़ना जब तक इस कुरान को ना पढ़ लूं, मैंने और नहीं कमाना जब तक मैं इस कुरान को ना समझ लूं, मैंने कुछ और करने सीज कर ले अपने आप को, देखिए इमरजेंसी लगती है सब सीज, अल्लाह ना करे कर्फ्यू लगे सब सीज, एक सीज लगाइए अपनी जिंदगी पे, स्टॉप हेयर, जहां जिससे आपका दिल करता है दिल ठुकता है जिसकी बात समझ आती जाके उससे एक दफा कुरान सीख के, वरना हम वो ड्राइवर हैं कि जो बगैर ड्राइविंग सीखे ड्राइविंग कर रहे हैं, तभी तो ठोकरे खाते हैं ना, जिसको नहीं आता फिर वो खुद भी खराब होता है और इसी तरह से होता है। तो ये मेरे और आपके पास एक अमानत है, ये अल्लाह की किताब है, इसको बंदों तक पहुंचाना है, प्लान बनाएं। इस अमानत को अगर इंसानियत तक नहीं पहुंचाया, इंसानियत ख्वाहिश परस्त होगी, उनके कपड़े भी उतर गए, उनके लिबास भी खुल गए और इसी वजह से वह। और जिस दिन आप सोचेंगे, अभी मैं रस्ते में भी एक मैसेज सुन रही थी किसी स्टूडेंट का, जब तकवा आता है ना तो खुद हलचल लग जाती है, मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने इंडिया जाना है, मैंने बांग्लादेश जाना है, मैंने इधर जाना है, मैंने वहां क्या करना है, मैं वहां जाके क्या करूंगी। कोई आपको थिंग्स टू डू की लिस्ट नहीं देता, कोई जॉब असाइन नहीं करता, कोई कल आपसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा, आपका दिल मांगेगा कि जाऊं, जाना है, हम सब ने ईद पे जाना है, इधर जाए उधर जाए, प्लान लेकर जाए कहां जाकर क्या करना है। फिर जो ख्याल आएंगे आप हैरान हो जाएंगे, जब इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है ना तो अल्लाह के हुक्म से फिर अल्लाह ताला उसके दिल में ख्यालात भी डालता है। और इसके लिए फिर जरूरत है कि उम्मत एक टीम बने और इस टीम के साथ जब काम करेंगे फिर देखें हर बंदे को उसके हालात के मुताबिक लेना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत कुछ बेहतर होगा। बात लंबी हुई लेकिन इसकी जरूरत थी। और आज के दौर का सबसे बड़ा जिहाद पता क्या है? 5 माह है वो लेक्चर, आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाजा होगा। आज के दौर में सबसे बड़ा एहसास आज मुसलमानों का काम क्या है कि उनके अंदर से शर्मिंदगी का एहसास खत्म कर दें। वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम, ये एहसास निकाल दें। इसके लिए फिर हमें टीन्स तक पहुंचना होगा, अपनी यूथ को कुरान का ये खूबसूरत तरीका सिखाना पड़ेगा जो हमने सूरत नूर में पढ़ा, और हम जो आजकल रोज इधर उधर पढ़ते हैं, मैं और आप सिर्फ, हम तो उर्दू वालों को पढ़ाएंगे, अपनों को ही पढ़ा रहे हैं, चाहे हम अमेरिका में कई साल से या कुछ। अगर आपको वेस्ट में इस्लाम फैलाना है तो आपको अपने बच्चों को इस तरह कुरान सिखाना पड़ेगा कि उनके अंदर रूह बेदार हो, फिर वो जाके बात करें। मैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, हमारी इंग्लिश सुन के वो रो पड़ेंगे कि जाइए आपके हम बात नहीं सुनते। इनके साथ वो ही बात करेंगे जिनके यहाँ के एक्सेंट है, और उसके लिए हमें अपनी यूथ को लाना पड़ेगा। और यूथ अगर दुनिया कमाती रह जाए और वो अपने कैरियर बिल्ड में करे और इसी में उनकी शादियां हो जाए, शादियों के वे बच्चे हो जाए, वो एक विश सर्कल में चलती रहे, उम्मत पे जवाल ही रहेगा। और उम्मत के हालात उसी दिन बदलेंगे जिस दिन मुसलमानों की यूथ को इस बात का यकीन आ जाए। अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं बनना, एहसास कमतरी को खत्म कीजिए। फिर आप देखिए, जिस दिन हम इस बात में कामयाब हो गए ना कि जो मुसलमान हैं वो मुसलमान लगे, लिखिए इस मोटो को, मैं मुसलमान हूं और मुझे मुसलमान नजर आना है, उस दिन आप कामयाब हैं। ये तो बड़ी महरूमी की बात है ना कि आप मुसलमान दिखना ही ना चाहे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये अर्ज पैदा कर दे। नीड ऑफ द आवर ये है कि जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, और इसमें मुश्किलात तो फिर आएंगी, इसीलिए अब आगे देखिए ऐसी मुश्किलात की बात कर दी।